दुआओं का बड़ा अच्छा गीत बजा दिया। सहज पुरुषार्थ की विधि, बोलो पूरी लाइन। दुआएं दो और दुआएं लो, बड़ा राज है इसमें। दुआओं को सहज भाषा में क्या कहेंगे? आशीर्वाद, शुभ भावनाएं, दूसरों के लिए अच्छा अच्छा सोचना। इससे हमारा चित्त भी निर्मल हो जाएगा और अंदर में जो बहुत सारी चीजें भरी रहती हैं वो भी निकल जाएंगी। क्या भरा रहता है? कल तो बाबा ने सब साफ साफ सुना दिया ना, सेवा का सबसे अच्छा तरीका वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस से बनेगा वायुमंडल, और वायुमंडल का अनुभव कभी कोई भूलता नहीं है। मधुबन में आते हैं, वायुमंडल का अनुभव होता है। ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, असली चीज तो भूल गई बीच वाली, तपस्या भूमि, योग भूमि कहा बाबा ने, तपस्या भूमि। ब्रह्मा बाबा मामा जो सबसे महान योगी हुए, चारों युगों में जिन जैसा योगी कोई नहीं, वो भी यहीं थे, और महान आत्माएं दादियां भी। ऐसी भूमि के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर थे। हम थोड़ा थोड़ा रिपीट भी कर लेते हैं। किस किस को याद किया बाबा ने? दादी प्रकाशमणि और मामा। क्यों याद किया? सुंदर बात थी, गहरी भी, धारणा की भी, जो सब में नहीं होती। वृत्ति से ही तो जोड़ा था बाबा ने। बोलो, याद करो, याद करो। किसी का भी कुछ भी चित पर रखती नहीं। मामा का भी ऐसा ही। मामा के सामने सब बच्चे थे, वो तो माँ थी, तो माँ बच्चों का रख के करेगी भी क्या? माँ तो सब है ना। आप कैसी रहती है भावनाएं बच्चों के लिए, कैसा भी हो मेरा है। तो मामा तो माँ थी, लेकिन दादी भी कभी किसी की कोई भी चीज वृत्ति में चित्त पे नहीं रखी। बहुत क्लियर समझ ले इसको। और बाबा ने भी नहीं रखी, ब्रह्मा बाबा ने। देखो, एक व्यक्ति ने कोई गलती की है, वो गलती उसकी सबको पता चल गई, तो सबकी वृत्ति में, समझ गए ना, ये व्यक्ति ऐसा है। इसको कहते हैं वृत्ति, सूक्ष्म फीलिंग्स में। और महान वो बन जाता है जो कुछ भी नहीं रखता। बाबा ने बहुत अच्छी बात सिखाई थी, हर व्यक्ति हर रोज बदल रहा है। तुमने किसी को 10 साल पहले देखा था गुस्सा करते हुए, वृत्ति में समा लिया था, व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है। अब 10 साल के बाद वो मिला है, तो किस वृत्ति से देख रहे हैं? ठीक है ना, बड़ा क्रोधी है, बच के रहो। इसको वृत्ति कहते हैं। क्लियर है ना वृत्ति क्या है? और बड़ी अच्छी सूक्ष्म धारणा हो गई हम सब की, कि किसी का कुछ भी चित्त पर न रखें, क्योंकि दिल में, दिल क्या है? बहुत सुंदर शब्द है ये, तो सबको कभी भूलना नहीं है। हमारा दिल है बाबा का तख्त, भगवान बैठता है हमारे दिल में। इसीलिए तो कह दिया हर दिल में भगवान है, सर्वव्यापी की बात यहीं से तो शुरू हो गई। अब जिस दिल में भगवान को बैठाना हो, उस दिल में अगर गंदगी हो क्या होगा? गंदगी से क्या फैलती है? बदबू। भगवान बैठेगा, कहेगा भागो यहां से, भगवान तो छोड़ो कोई मनुष्य भी नहीं बैठेगा। तो किसी की कोई भी गंदगी हम अपने दिल में नहीं रखें, समय ही नहीं। बाबा की इस मुरली से हम ये धारणा पक्की कर दें। बोलो क्या विचार है, करेंगे? बहुत सुंदर धारणा है, क्योंकि बाबा ने कहा, बहुत ही सूक्ष्म और पावरफुल बात है ये। किसी के लिए कोई भी निगेटिव या व्यर्थ वृत्ति होगी तो वाइब्रेशंस की सेवा नहीं कर सकेंगे, वो दीवार बन जाएगी, रोकती रहेगी। हर संगठन में यही तो हो रहा है, हर परिवार में यही हो रहा है। ये ऐसा है, ये ऐसी है, इसने ये किया, उसने वो किया, वो सब अपने चित्त पर लेकर बैठे हैं, तो व्यवहार उस अनुसार रहता है, डिस्टर्बेंस होता है, टकराव होता है, निगेटिविटी रहती है, परिवारों में प्यार नहीं रहता, अच्छे वाइब्रेशंस नहीं रहते। इसको ठीक कर लें, क्या वृत्ति बनाएंगे? क्या शुभ, क्या प्रैक्टिकल बात करेंगे, जरा चेंज कर देना है आज से। आप सभी मधुबन में भी आए हैं, यहाँ के सुंदर माहौल में चेंज कर देना है अपने को। सबको किस वृत्ति से देखना, अब सिंपल भाषा, सबको किस नजर से देखना है? पहला शुरू करेंगे आत्मिक, ये सबसे बड़ी चीज है। इसको ही बाबा कहते हैं आत्मिक वृत्ति बनाओ। सब आत्माएं हैं, सब धर्मों की आत्माएं हैं, तो धर्मों में जो भेदभाव दिखाई देता है या धर्मों में जो नफरत रहती है, देखो कई धर्मों ने तो नफरत ही फैला दी, फैलाई ना, और उसका परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है, वो खुद दुखी हैं, खुद अशांत हैं। तो अगर हमारी आत्मिक वृत्ति होगी तो संभाव हो जाएगा, हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा। हमें अपने चित्त को बहुत निर्मल करना है। शीतल, जो संडे की मुरली थी, शीतल योगी, शीतला देवी, शीतल कर देना है अपने को, चित्त को शीतल निर्मल कर देना है। तो सबके लिए आत्मिक वृत्ति और सरल भाषा, अब मैं यहां बैठ के आप सबको देख रहा हूं, मुझे किस नजर से देखना चाहिए? नहीं, आत्मा के आगे बढ़े। ये सभी देव कुल की महान आत्माएं बैठी हैं, यह है हाई क्वालिटी की वृत्ति, हायर कॉन्शियसनेस इसे कहते हैं। इससे वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाएंगे। आप सब अपने अपने घरों में इस वृत्ति का अभ्यास करके देखना। हमारे घर में सब आत्माएं हैं, पांच लोग हैं, ये पांच आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं और देव कुल की आत्माएं हैं। चलो महान न हो, आपको लगेगा ये महान कहाँ है, मैं से लड़ता है, महान कहाँ हो गया, लेकिन देव कुल की आत्माएं हैं ये, और भगवान के बच्चे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं, सब आत्माएं उसकी संतान हैं। इस वृत्ति से आप अपने घर में देखो, दो बार बैठ जाना अपने घर में शांति में, एक मिनट, बस एक एक मिनट बैठना, देखना ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। ये देव कुल की आत्माएं, हमारा परिवार देव कुल का परिवार है, ये सब भगवान के बच्चे हैं। कितना सुंदर संगठन है, सहज बात है ना? ये चिंतन, वृत्ति से चिंतन, चिंतन से वाइब्रेशंस। उसे वातावरण बन जाएगा घर में बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। पसंद है, करेंगे? अपने अपने घरों से करना है सबको ये सेवा शुरू। बाबा की बहुत सुविच्छा है कि उसका हर स्थान, स्थान माना सेंटर, चाहे वो गांव में है, क्या बन जाए, लाइट हाउस, जिसपे वाइब्रेशंस, वातावरण बहुत आकर्षक हो, जहां आत्माएं खींच खींच कर आए। कुछ आत्माएं आती हैं, कहती हैं हमारे यहाँ सेवा नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ती? सीधा सीधा बताओ ना, इसमें डरने की कोई बात नहीं। वाइब्रेशंस आकर्षक नहीं है। बाबा ने सेवाओं के लिए ये बहुत सुंदर बात कही है, निमित्त आत्मा के वाइब्रेशंस और स्थान के वाइब्रेशंस ही सेवा की वृद्धि का आधार हैं। मैं तो सब जगह जाता हूँ सेंटर्स में, मैं देखता हूँ जहाँ बहनें बहुत योगयुक्त हैं, सिंपल हैं, निरंकारी हैं। बाबा ने कहा ना, जो निर्माण है वही महान है, जो निर्माण चित्त हैं वो महान आत्माएं जहाँ हैं वहां सेवाएं बहुत हैं। मैं पीछे एक जगह गया, 5 साल पहले गया था, तो बहने बुला रही थी फिर आ जाओ एक क्लास के लिए, केवल पास में गए थे तो एक क्लास के लिए आ जाओ। मैंने सोचा 50-100 लोग होते हैं, चलो क्लास कराते हैं। हम ऐसे ही सोच कर गए, जब वहां गए हॉल था ओम शांति भवन से 1.5 गुना। अभी सीमेंट सीमेंट हुआ था तो पूरा तैयार नहीं हुआ था, और भाई बहने बैठे थे 2000। मैंने बहन जी से पूछा, मेरे पास ही बैठी थी, आपके स्टूडेंट हैं, उधार लाई हो? उधार माना हम जाते हैं तो वही आ जाते हैं ना, और भी का नहीं, ये सब हमारे हैं। मैंने कहा कितने सेंटर? 9 सेंटर, 40 गीता पाठशाला है, ये सब तो आए नहीं है, सब तो आते नहीं, नेचुरल है। 2000 आए हैं तो 1000 नहीं आए हैं, 3000 स्टूडेंट होंगे। मैं देखने लगा उस बहन को, उसको कोई नहीं जानता, हमारे यहाँ भी कोई नहीं जानता, बोली सी सिंपल, जो सिंपल हैं वही महान हैं। वाइब्रेशंस वही क्रिएट होते हैं, और जहाँ हाई फाई लोग हैं, आजकल की भाषा है ना हाई फाई, समझते हैं भाई भी पुराने बुजुर्ग बैठे मेरे सामने, बहुत तेज तराक, वहां वाइब्रेशंस नहीं बनते। तो बाबा ने कहा 3 तरह की सेवाएं एक साथ करो, ये बाबा की श्रेष्ठ इच्छा है। सब हम सेवादारी हैं, सेवा के फील्ड में हैं। कौन सी 3 सेवाएं? कर्मणा को क्या कहा, पूरा बताओ, प्रैक्टिकल योगी जीवन क्या दिखाई दे, चेहरा चल चलन माना पूरी एक्टिविटी, पूरा चरित्र, पूरी धारणाएं योगी जीवन की दिखाई दे। मनसा से वाइब्रेशंस फैलाएं, वाचा से तो हम सब करते ही हैं, ध्यान दें, लेकिन चेहरे से योगी जीवन की झलक दिखाएं। वो तो तब वो दिखाई तो नहीं जाएगी, वो तो आप ही दिखेगी। हम जितना अच्छा योग करेंगे, हमारे चेहरों पर योग के लक्षण दिखाई देंगे। क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? आज भी बाबा कह रहे थे सवेरे, तुम बहुत बड़े बाप के बच्चे हो, अगर ये नशा रहे तो चलन व्यवहार रॉयल हो जाएगा। बड़े बाप के बच्चे, ये नशा हो जाए हमें, है नशा, कहना और सुनना तो रोज है, लेकिन इस फीलिंग में हम आ जाएं, बड़े बाप के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे, तो बड़े हो गए ना हम भी, तो छोटी छोटी बातें हमें शोभा नहीं देती। मान लो दो व्यक्ति छोटी बात पे झगड़ रहे हैं, बात दो पैसे की भी नहीं है, झगड़ रहे हैं बहुत, कैसा लगेगा? दोनों ने स्थिति बिगाड़ ली है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, मैं बड़ा मैं बड़ी, होगा कुछ मजा आएगा जिंदगी में? तो हम बड़े बाप के बच्चे हैं, बड़े विचार, बड़े रॉयल संस्कार, रॉयल व्यवहार हमारा होना ही चाहिए। चिंतन हमें रॉयल बना देता है। बाबा ने देखो कितनी सुंदर सहज सहज विधियां हम सबके सामने रख दी। हम इस अच्छी फीलिंग में रहें, इस अच्छे स्वमान में रहें, तो स्थिति आप ही बनती जाएगी। याद रखेंगे बाबा का महावाक्य, एक छोटी सी लाइन, सुंदर राज, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। चार शब्द हैं, जैसी स्मृति वैसी, समझ लें इस बात को सभी अच्छी तरह। स्थिति नहीं बनती अर्थात अर्थात स्मृतियां श्रेष्ठ नहीं हैं। सभी आज कितने आए होंगे नीचे मेरे पास, योग नहीं लगता। मैंने कहा भाई मेहनत करो, अब ये थोड़ा ही दो मिनट में बता दें कि ऐसे लगा लो लग जाएगा, तो मेहनत का विषय है ना योग। मेहनत योग किनका नहीं लगता बोलो, क्या बोला? औरों से योग लगा हुआ। ये भी अच्छी बात है, जो व्यर्थ में बहुत रहते हैं। अभी च्वाइस अपनी अपनी, हमें व्यर्थ पसंद है या परमात्मा सुख लेना पसंद है, खुद को सोचना है ना, कोई और थोड़ा ही करेगा हमारे लिए, खुद को सोचना है। हम घंटों व्यर्थ बातों में बैठ कर निकाल दें या वो करें जो कल बाबा ने कहा, क्या कहा था? नहीं कुछ और भी तो कहा, करने का काम दिया और काम दिया। पतला होने के लिए क्या करते हैं? मैंने सीधा ही बोला तो आपको याद आ जाए, तो रूहानी ड्रिल करो। बाबा ने कहा परम नाम से चलो, माना परम नाम से शुरू करो। मैं आत्मा, पहला आत्मा का, मैं परम धाम में, वहां से नीचे आई तो कहाँ आई? सतयुग में, वहां का स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण फरिश्ता, ये सब दिल हैं हमारी। ये करते रहेंगे तो क्या होगा? दो शब्द बोले बाबा ने, खुश बहुत रहेंगे और उड़ती कला रहेगी। आप ये करके देख लो, पांच बार रोज ज्यादा नहीं, एक मिनट भी कर लो, कितना मजा आएगा। पहला आनंद होगा कि व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यर्थ तो तब होता है ना जब मन को हम अच्छे संकल्प नहीं दे रहे हैं, जब मन में कुछ विशेष करने का लक्ष्य नहीं है, जब हम कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं, तब व्यर्थ चल रहा है। अगर लक्ष्य हो, आपके पास काम है कुछ विशेष, आज ये काम करना, व्यर्थ चलता है? बताओ, आज मेहमान आ गए हूं घर में, पांच सात चीजें बनानी है उनके लिए, व्यर्थ चलेगा? छोटे छोटे लक्ष्य आप देख लो घरों के। हमें अगर एक अच्छा लक्ष्य हो जाए कि ये करना है, तो व्यर्थ नहीं होगा। तो पांच वो तो अच्छी बात थी, उस पर हम आ रहे हैं अभी। तो ये हम सबको शुरू करना है। इस मुरली से दो बातें ये पक्की करनी है, पहली हुई वृत्ति वाली, किसी के लिए कुछ भी हमने रख लिया हो बुद्धि में, उसको साफ कर दे, वो गंदगी है, उस गंदगी से बदबू फैलेगी, पहली बदबू किसको आएगी? स्वयं को, दूसरों को तो आए या ना आए पता नहीं, उन्होंने सेंट छिड़क लिया हो तो उनको ना आए, खुद को तो जरूर आएगी। इसलिए वृत्ति और पांच स्वरूपों की ड्रिल ये बहुत पक्की है। और भी ड्रिल्स हैं, खेल पूरा हुआ, अब हमें सब कुछ छोड़कर वापिस जाना है। ये वृत्ति, ये प्रैक्टिस, ये रूहानी ड्रिल। कभी हम रूहानी ड्रिल करें संसार को सकास देने की, कभी ड्रिल करें बाबा के पास जाना और आना। मैं आत्मा बाबा के पास गई, कुछ देर वहां बैठी, फिर आ गई, देह में प्रवेश कर लिया। कभी अभ्यास करें भिन्न भिन्न स्वमान का, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा हमें क्या देख के प्रश्न पूछता है और हम क्या पूछते हैं? हम क्या पूछते हैं बाबा से? दादी पूछती थी, दादी ने कई बार नीचे से ही बाबा से पूछा सामने, बाबा प्रत्यक्षता कब होगी, बहुत देर हो गई। तो बाबा क्या पूछते हमसे? आप अपने दो स्वरूपों को कब प्रत्यक्ष करोगे? कौन से दो स्वरूप? संपन्न और संपूर्ण। बड़ी चीज हैं दोनों ही, कहने की बात तो नहीं, हम मुरली की बात रिपीट कर लें और काम हो गया, इससे तो काम नहीं चलेगा। संपन्नता अर्थात फुल हो जाएं हम, किस में फुल? सर्व खजानों में फुल, तृप्त आत्मा, सब कुछ मिल गया हमें, इसे कहते हैं संपन्नता। एक व्यक्ति धन संपन्न है, तृप्त रहता है ना, संतुष्टता रहती है, बहुत पैसा है हमारे पास, बाबा के सर्व खजाने भरपूर हो जाएं, ये होगी संपन्नता। और संपन्न बनते बनते फिर योग लगाते लगाते हमारी बैटरी चार्ज होते होते जब 100 पर पहुंच जाएगी, वो होगी संपूर्णता, हम परफेक्ट हो गए, बैटरी फुल हो गई है। तो बाबा पूछ रहे थे ये अपना स्वरूप कब प्रत्यक्ष करोगे, इसकी डेट फिक्स करो। अब ये हर एक का व्यक्तिगत पुरुषार्थ है और ये बड़ा सूक्ष्म है और मेहनत का है। बाबा शुरू में बहुत अच्छी अच्छी बातें पुरुषार्थ की सिखाई हम लोगों को, जब तक डेट फिक्स नहीं करते कार्य में परिपक्वता नहीं आती। देखो दादी क्या किया करती थी, ये होल बना, जो बनाने वाले वो ढीले ढाले होते हैं, कर रहे काम धीरे धीरे, डेट फिक्स कर दी, दादी इस तारीख को होल की ओपनिंग करेगी, काम की स्पीड चार गुनी हो गई कहते ही। ओम शांति वन बन रहा था, देर लग रही थी, दादी ने फिक्स कर दिया इस तारीख को दादी इसकी ओपनिंग करेगी, तेजी से कदम बढ़ गया। ऐसे ही आंसर और बन ही नहीं रहा था, बहुत देर हो रही थी, दादी ने फिक्स किया, रात दिन लग गए लोग, हम देख रहे दादी आ गई है तो भी लगे हुए प्लास्टर करने के लिए, आ गई दादी जल्दी कर दो। डेट फिक्स जब तक नहीं करते स्पीड तेज नहीं होती, नहीं तो दूसरों को ही देखते रहेंगे कौन कर रहा है, सब तो ऐसे ही चल रहे हैं। और बोलो बाबा ने क्या बताया, कुछ बात रह गई है और? हाँ और बोलो दो बातें हैं, हाँ और बोलो, बुरी दे तो लेना ही नहीं है, और बोलो, कोई भी आपके पास आए खाली न जाए, क्या क्या लेकर जाए? कोई ऐसा हो, देखिए ये बड़ों के लिए बाबा कह रहे थे, जो जिम्मेदार लोग होते हैं हर जगह, कोई क्षमा लेकर जाए। कई को होता है ना, कोई गलती कर दी, बड़े के पास आया है, डर रहा है, क्षमा दान मिल जाए, हल्का होकर जाए। भारी आए थे, हल्के होकर गए। कोई उमंग उत्साह लेकर जाए, ढीले ढाले आए थे, कुछ करने की उमंग उत्साह लेकर गए। कोई सहयोग लेकर जाए, सहयोग मांगने भी तो आते हैं ना, बहुत चीजें हैं। और सोच लो, कोई शांति लेकर जाए, कोई सुख लेकर जाए, कोई प्रेम लेकर जाए। और नहीं तो लोग कुछ सीख कर जाए हमसे, सीखते हैं ना बहुत लोग, ज्ञान स्वरूप में सेवाएं चलती हैं, तो लोग अनुभव जब सुनाने आते हैं, एक दो बड़े आदमी, तो ये जरूर सुनाते हैं कि यहाँ सबके चेहरों पर मुस्कान बहुत है, वो बाहर नहीं दिखती, टेंशन दिखती है, तो सीख के जाते हैं ना। यहाँ सब काम कितना सहज चलता है, सीख कर जाते हैं सब, और चलता ही है। हमारे यहाँ जिस तरह काम चलता है बहुत सुंदर, वैसा दुनिया में कहीं नहीं चलता होगा। टेंशन रहती है बहुत, खर्च होते हैं बहुत ज्यादा, नुकसान होते हैं बहुत ज्यादा। तो हम सभी ऐसा कर लें कि हमारे पास कोई भी आए खाली हाथ न जाए। भाई किसका फोन बज गया? अभी तो 15 मिनट है, ओम शांति क्यों बजा दिया आपने? खाली हाथ न जाए, सभी छोटे बड़े सीख लें। तीव्र पुरुषार्थ में चाहिए बहुत दृढ़ता, जिस पर बाबा बहुत ध्यान खिंचवाते हैं, कुछ करने की उमंग उत्साह, इसकी बहुत जरूरत है। कई सोचते हैं विनाश तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं, चलो होगा तो जरूर, पर कब होगा ये भी पता नहीं। पता नहीं और 50 साल न खींच दें प्रभु जी, पहली दिवाली आई, दूसरी नहीं आएगी, कभी चलाते चलाते हम बूढ़े हो गए, कहीं दूसरा जन्म लेना पड़े, ढीले हो गए लोग, ढीले नहीं होना है। देखिए ये चीज ऐसी है, मैं एक दूसरी बात कहूं आपको, मान लो 50 साल भी हो, लेकिन अगर 50 साल हमें ईश्वरीय सुख मिलने लगे रोज, 50 साल कितने सुंदर होंगे, हम कहेंगे और 50 मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो, होगा या नहीं। लेकिन अगर पुरुषार्थ ही न हो रहा हो तो एक एक दिन भी भारी। इसलिए हम अपने जीवन को, संगम युग के इन क्षणों को ईश्वरीय सुखों में व्यतीत करते रहें, दृढ़ता हो जाए जीवन में। अब हम थोड़ा सा ले लें, एक बहुत अच्छी बात थी, पास विद ऑनर होना है तो बातें तो आएंगी, सूक्ष्म आती जाएंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बातें आती जाती हैं। घबराओ नहीं, क्या कहाँ जाओ, गहराई में जाओ। किसकी गहराई में? बातों की गहराई में नहीं, ज्ञान की गहराई में, जो सूक्ष्म राज बाबा ने बताए उनकी गहराई में, ड्रामा के ज्ञान की गहराई में जाओ। जैसे बाबा ने कहा, ये एक समय था जब 2-4 मुरलियों में ये लहर चली, कहीं तुम्हें अकल्याण भी दिखाई देता हो, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा रहता है। पर्दा हटेगा, कल्याण दिखाई देगा, ये राज हो गए ना, बहुत अच्छे राज बता दिए सत्य के सूर्य को। करो याद आगे, मैं इसलिए रुकता हूँ, आप याद करो, बुद्धि को जगाओ, केवल सुनने के लिए नहीं बैठना है। कई लोग बाबा के पास एक बात लेकर आते हैं, और जो बात प्रैक्टिकल होती है जहां तहां, कि सत्य की कहीं सुनवाई नहीं होती, असत्य वाले लोग पावरफुल होके आगे निकल जाते हैं, असत्य वाले अपनी असत्य बात को सत्य सिद्ध कर देते हैं, सच्चों को डाउन कर देते हैं। ये बहुत चलता है संसार में, ब्राह्मण संसार में भी चल जाता है। तो बाबा ने कहा, देखो बाबा का महावाक्य सुन लो, जिधर सत्य है उधर मैं हूं। ठीक है, झूठ वाले लोग पावरफुल हैं, वकील भी तो ऐसे ही होते हैं ना, चला देते हैं कुछ भी, झूठ को सच, सच को झूठ। लेकिन जिधर सत्य है उधर बाबा है। अब हम सोच लें, च्वाइस हमारी, झूठ का साथ पकड़ें या सत्य होकर बाबा का साथ लें। एक बात बहुत अच्छा कहा बाबा ने, सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते, बादल बिखरेंगे सत्य का सूर्य प्रकट हो जाएगा। एक और राज बताया, सत्य को सत्य में शक्ति है स्वतः ही सिद्ध होने की। ये राज है, ये ज्ञान की गहराई है। अब सत्य को सिद्ध होने में देर लगती है, देर लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सत्य सिद्ध होता है अवश्य। लेकिन कब होगा सत्य सिद्ध और कब उसका आनंद हमें मिलेगा? जब हम अपनी स्थिति को बिगाड़ेंगे नहीं। मान लो सत्य को सिद्ध होने में देर लग रही है, लगती है देर, हमने जहां तहां देखा, आपने भी देखा, सत्य जल्दी सिद्ध नहीं होता। कलयुग में राज ही झूठ का चलता है, क्योंकि ये तमोप्रधान भी समय है, इसमें तमोप्रधानता की विजय होती है बहुत जगह, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। तो जब टाइम लग रहा हो, जब आपका कोई न सुन रहा हो, तब अपनी स्थिति को अच्छा रखना, ये है सत्यता की शक्ति। जो इस सत्यता की शक्ति में स्थिर हो जाते हैं, सत्य उन्हें बहुत शक्तिशाली बना देता है। और जो अपनी स्थिति बिगाड़ लेते हैं ये सोच सोच कर कि सच्ची बात कोई सुन नहीं रहा, देखा सच के साथ कोई नहीं है, सब झूठों के साथ हो गए हैं, रो लिया, स्थिति बिगाड़ ली, मूड बिगाड़ लिए, तो सत्यता की शक्ति मिलती नहीं है। बाबा की ये भी लहर चली किसी साल में, सत्य को सभ्यता के साथ बोलो। जो सत्य होते हैं वो थोड़ा अभिमान में आकर बोलते हैं मैं सच्चा हूं, ये नहीं, सत्यता के साथ सभ्यता, नम्रता। सत्यता की शक्ति इससे प्रकट होगी। तो अगर इस तरह की गहराई में हम चलेंगे तो घबराएंगे नहीं कि भगवान हमारे साथ है, विजय हमारी ही होगी, तो घबराएंगे नहीं। बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, मैं अकेला अकेली नहीं हूं, तो घबराएंगे नहीं। तो बाबा ये देखते हैं ऊपर से कि छोटी छोटी बातें बच्चों के पास आती हैं और बच्चे स्थिति बिगाड़ लेते हैं, घबरा जाते हैं, खुशी खो देते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, यहां गड़बड़ होती है बस। इसलिए घबराना नहीं है, इनको परीक्षा समझना है। बाबा की मुरलियों में, साकार मुरलियों में आजकल आती रही है एक बात, तुम बहुत बड़ा एग्जाम पास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा पद भी बहुत बड़ा है। हमारे देश में सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस आईपीएस, जिसमें कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, उसका एग्जाम कितना बड़ा होता है? छोटा नहीं होता। और दूसरे एग्जाम होते हैं सीए का, सीएस का, और कुछ कुछ, उनमें बहुत टाइम लगता है, बच्चों को निराश होते हैं, 7 बार एग्जाम दे दिया, सीए का फाइनल क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो घबरा जाते हैं ना। तो बड़ा पद है तो परीक्षा भी टफ होगी ना, छोटी तो नहीं होगी ना, हाई स्कूल वाली तो नहीं होगी ना, थोड़े कठिन क्वेश्चन आएंगे। और जिनको विश्व की बादशाही मिलनी हो उनकी परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं, क्या विचार है? बोल नहीं रहे ढंग से, परीक्षाओं से सबको डर लगता है, मैं हो तो अच्छा है। क्या किसी ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाओगे जिसमें परीक्षा होती ना हो? दिलाएंगी माताएं? वो पढ़ेगा क्यों, मेहनत क्यों करेगा? तो फिर तो मोबाइल पे ही रहेगा, गेम ही खेलेगा बच्चा। तो जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। देखो आईएएस के लिए ही हर साल ऐसा होता है कि गरीबों के बच्चे, यूपी में रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर गया, नाम आया उसका, अखबारों में आया, कलेक्टर बना, बाप रिक्शा चलाता है, चाय बेचने वाले का बच्चा आईएएस हो गया, धोबी का बच्चा आईएएस हो गया। तो मेहनत है ना, परीक्षाओं से डरना नहीं है, विश्व की बादशाही मिलती है, हाईएस्ट अचीवमेंट, जिससे बड़ी प्राप्ति कोई नहीं, वो भी एक जन्म नहीं, जन्म जन्म श्रेष्ठ पद मिलते रहेंगे। तो छोटी छोटी बातों को छोटा ही समझना है, हम बड़े हैं बातें छोटी हैं, सब अपने अंदर पक्का कर दो। बाबा यहीं बैठकर कहते थे, बच्चे बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। बहुत सुंदर लगा मुझे महावाक्य बाबा का, कई बार कहा बाबा ने, वो एक एक साल में बाबा की लहरें चलती रहती थी। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। बातें बड़ी नहीं है, बड़े तुम हो। हम अपने बड़ेपन को भूल जाते हैं तो छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो बातों से घबराएंगे नहीं, ज्ञान की गहराई की कुछ बात अपने पास रखेंगे ताकि हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, हम छोटी छोटी बातों में घबरा न जाएं। क्या घबराहट होती है, क्या होगा अब, मेरा क्या होगा, कहीं मेरे विरुद्ध न हो जाए ये काम, फैसला मेरे विरुद्ध न चला जाए, कहीं मुझे ये न कर दिया जाए, घबराते हैं। आत्मविश्वास की कमी, बाबा में विश्वास की कमी, दोनों चीजें घबराहट पैदा करती हैं। आत्मविश्वास क्या होना चाहिए अपने में, बहने बोलेंगी, मैं कल्प कल्प की विजयी हूं, तो अब भी विजय होनी निश्चित है। और क्या रखना चाहिए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो क्या तुम्हें मिलेगी, ठीक है ना, संकल्प कर दो। और बोलो क्या होना चाहिए, असली बात नहीं बोल रहे आप, जिसमें सारा रस है, और बोलो इसको थोड़ा नशे में ले आओ, भगवान हमारा साथी है, इस नशे में तो आ जाए जरा, गीत भी तो है, गुनगुनाया करो, बाहर न गुनगुनाए तो बाथरूम में गुनगुनाया करो, भगवान हमारा साथी है, मजा आ जाएगा। जिसको भगवान साथ देता हो वो भी यदि घबराएंगे तो बाकी निर्भय कौन बनेगा, रावण के बच्चे वो तो बनेंगे ही नहीं। तो हमें बहुत पावरफुल अपने को रखना है। देखो मैं बताऊं अपना अनुभव अभी का, मैं नीचे जा रहा था आपसे 6 दिन पहले, तो हमारे जो साथी हैं बेचारे को उसको बुखार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला, मेरे साथ ये भाई सेवा करता है, यहाँ भी आया क्लास में, मुझे कहा मैं चलूं आपके साथ, मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा था, उसको ही मैंने बुलाया था, अभी ठीक कर दो, दबा वबा के ठीक किया। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी यहाँ सेवा है, बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, मैंने उसको बुला लिया है। और इतना अच्छा अनुभव रहा, जाते ही पहले ही दिन 3 लोग आए मेरी ट्रीटमेंट करने के लिए, और एक सवेरे करता, एक दोपहर में, एक रात को। मैं भी सोच रहा था ये प्रभु लीला कितनी सुंदर है। ये संकल्प ही बहुत सुखदाई है, बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। माताओं को ज्यादा काम करना पड़े ना कभी घर में, मेहमान आ जाएं, घबराना नहीं, बाबा को बुलाना, हजार भुजाओं सहित आ जाओ, देखो कैसे फटाफट काम होता है। आपको अनुभव होगा कि कोई और मदद कर रहा है, बहुत ज्यादा काम फटाफट होने लगा है। हो गए ना अनुभव, सुना देना सबको इनको। तो माताएं सब बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बातें छोटी हैं, फीलिंग नहीं, पक्का कर दो, बातें बातें छोटी हैं, बड़े तो हम हैं, पूर्वज हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, भगवान से कंबाइंड हैं। बाबा ने कहा ना कल भी, कंबाइंड रहोगे तो बहुत हल्के हो जाओगे, पावरफुल हो जाओगे, उड़ती कला हो जाएगी। तो बाबा से हम कंबाइंड हैं, मोस्ट पावरफुल हैं। ऐसे संकल्पों के साथ घबराहट से दूर, दूसरों की भी घबराहट मिटाने वाले, ठीक है। तो मुरली ये इसका चिंतन करना, और दो बातें जो हमने कही, ड्रिल करनी है और वृत्ति साफ, कोई गंदगी नहीं, हमारा चित्त हमारा दिल भगवान का तख्त है, इस नशे में आ जाएंगे। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।